मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग जैसा आचार्य भगवंतों ने एक श्रावक के लिए व्रतों को धारण करने का उपदेश दिया, हम उसी के अनुसार उन व्रतों को धारण करने से पहले उन व्रतों के बारे में ठीक ठीक जानकारी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि व्रतों को धारण करके मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाऊंगा। व्रत तो मेरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मेरे राग द्वेष को घटाने और वीतरागता प्राप्त करने के लिए निमित्त है। व्रत नियम यह तो सब धर्म की प्राप्ति के लिए साधन है। मैं साधनों को ही साधना मान लूं और व्रत नियम करके ही मैं धर्म कर लिया ऐसा अपने भीतर मानकर बैठ न जाऊं। मुझे तो इन व्रत नियमों के माध्यम से अपने राग द्वेष के परिणाम को घटाना है, उसे जीतना है। राग द्वेष घटाने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा टोडरमल जी साहब लिखते हैं। राग द्वेष घटाने के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है और राग द्वेष घटाने की क्रिया का नाम ही सम्यक चारित्र है। सो मैं जो भी व्रत नियम आचरण कर रहा हूं उस सब का मेरा उद्देश्य राग द्वेष घटाने का है। अपने वीतराग स्वभाव को मैं प्राप्त करूं वही वास्तव में धर्म है। उस धर्म की प्राप्ति के लिए मैं व्रत नियम अंगीकार कर रहा हूं। ऐसा विचार करके हम व्रत नियमों को पालन करें, अंगीकार करें। सो पांच अनुव्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत श्रावकों के लिए घर गृहस्थी में रह करके भी पालन करने चाहिए, ऐसा उपदेश आचार्य भगवंतों ने दिया। जितना जिससे बने उतना। सो शिक्षा व्रत के द्वारा महाव्रत धारण करने वाले जीव किस तरह आचरण करते हैं, कैसे समता भाव और वीतरागता हासिल करते हैं, इस बात की शिक्षा मिलती है श्रावक को। सो ऐसे शिक्षा व्रत वह भी धारण करके वीतरागता के आचरण की शिक्षा लेता है। उस शिक्षा व्रत में कैसे अपन समता का अभ्यास करें, सो सुबह शाम और दोपहर में तीन संध्या कालों में हमने 48 मिनट तक कैसे पांच पापों का त्याग करके घर गृहस्थी में तमाम विषमताओं के बीच भी मैं हर्ष विषाद से मुक्त रहकर समता भाव धारण करूं, ऐसा अभ्यास किया। अष्टमी चतुर्दशी जो पर्व के दिन है, उन पर्व के दिनों में सारे दिन ही आरंभ सारंभ पापकारी से निवृत्त होकर के धर्मामृत का पान करूंगा, ऐसा अपन ने विचार किया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक और अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्रत है अतिथि संविभाग, जिसे आचार्य सुमंतभद्र स्वामी ने व्यापक दृष्टिकोण से बैया व्रत कहा। बैया व्रत का सीधा सा अर्थ है सेवा शुश्रूषा करना, लेकिन बैया व्रत तो एक अंतरंग तप है, वो बाह्य में पैर दबाने इत्यादि से पूर्ण होने वाला नहीं है, वो तो अंतरंग के परिणामों में जो वीतरागता के प्रति मोक्ष मार्ग के प्रति अनुराग है उसका प्रतीक है। बैया वृत्ति का अर्थ आचार्य भगवंतों ने किया कि जो वीतराग मार्ग पर चल रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु, उनके धर्म साधन में अगर कोई बाधा आ रही हो तो उसे दूर करके उनके धर्म साधन के अनुरूप वातावरण बनाना, यही बैया व्रत है। अकेले व्यापत्ति विपनोदा पदयो संवाहनम चगुण रागा बैया व्रतम यावा अनुपग्रहो संयमी नाम। संयमी जीवों के लिए अगर उनके आचरण में कोई पालन करने में बाधा आ रही हो तो उसे दूर करना गुण रागात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यह जो रत्नत्रय की एक रूपता ही धर्म है उसके प्रति मेरा अनुराग है, उस अनुरागवश मैं उस बाधा को दूर करूं और उनके अनुकूल वातावरण बनाऊं। पैर इत्यादि दबाना तो उपलक्षण है, सामान्य व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करना, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना वह तपस्या नहीं है। जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी सेवा अकेली नहीं, उनके माध्यम से रत्नत्रय की सेवा। मैं गुणों के प्रति अनुराग रखता हूं इसलिए सेवा कर रहा हूं, ऐसा भाव मन के भीतर आता है तब यह सेवा बैया वृत्ति भी सार्थक हो जाती, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में निमित्त बन जाती है। सो ऐसी बैया वृत्ति और ऐसी सेवा भी तीन तरह की है। दान का अर्थ आचार्य भगवंतों ने सेवा ही लिया है। चार बातों का ध्यान दान में रखना जरूरी है कि दान के समय आपके भाव कैसे सेवा के भाव हैं, वरना तो दान के समय अहंकार के भाव आ जाते हैं कि मैं तो दान देने वाला हूं। सो कहते कि दान तो सेवा के भाव से दिया जाए और देने वाला दाता दाता के सात गुणों से संपन्न हुए, और जो सामग्री दी जा रही है वह मोक्ष मार्ग के अनुकूल हो, और इतना ही नहीं जो पात्र है जिसे दी जा रही है वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाला हो, रत्नत्रय का धारण करने वाला हो, तो ऐसा जो दान या सेवा है वह हमारे जीवन को सार्थक करेगी। दाता के सात गुण जिसमें श्रद्धा भक्ति विज्ञान अलोलुपता क्षमा तुष्टि और अमात्सरी, ये सात भाव ये सात गुण दाता अपने भीतर धारण करता है तब उसके भीतर दान देने की योग्यता आती है। जिसे हम दान दे रहे हैं उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा है अत्यंत रुचि है अनुराग है, ऐसा नहीं कि भूखे हैं महाराज सो दे दो दया करके, हां भैया श्रद्धा पूर्वक ही दान की प्रक्रिया होगी। और भक्ति ये है कि महाराज हमारे यहां पर पधारे हैं, हम उन्हें अपने घर में छोड़कर के अन्यत्र कार्य के लिए कैसे चले जाएं, जब तक वो मेरे घर में हैं तब तक मैं अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, अपने घर से जब तक वो जिनालय से आए हैं तो वहां तक मैं कमंडरू लेकर उन्हें भेज नहीं देऊंगा, तब तक मैं किसी सांसारिक कार्य में नहीं लगूंगा, यही मेरी भक्ति है। ऐसा नहीं कि आप आइयो और हम दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं, हम संसार के कामों में लग जाएंगे, मेहमान को बुला करके कि आप हमारे यहां आओ, हम उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। सम्मान और आदर क्या है? थोड़ी उनके चरणों पर सिर रख देने का नाम सम्मान है? नहीं भाई, पांच पापों से उस समय निवृत्त होना ही उनका सम्मान है। मैं तो 24 घंटे सदग्रस्त हूं, सो पांच पापों में लगा रहता हूं, लेकिन आप रत्नत्रय को धारण करने वाले हमारे घर पधारे हैं, अब मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक आप मेरे यहां पर हैं, मैं पांच पापों का त्याग करता हूं, कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करूंगा, यही आपका सम्मान है। ऐसा भक्ति का भाव और विज्ञान। उम्र क्या है जो मुनि महाराज जिन्हें मैं की दान दे रहा हूं उनके योग दें, इस बात की जानकारी हो। उन्हें सर्दी इत्यादि तो नहीं है, गर्म पित्त प्रकृति तो नहीं है, मौसम कैसा चल रहा है, इन सब का ज्ञान नहीं। हमारी चीज चल जावे, हाँ हमारी चीज चल जावे नहीं, जो उनके रत्नत्रय में सहायक हो वह चल जावे, ऐसा भाव विज्ञान का उसके भीतर रहता है। ऐसा नहीं कि पानी के बाद रस, सब चीजें भीतर जाके लड़े, अगर गड़बड़ चली गई तो वे फिर कहती कि हम करेंगे, हम शक्ति पहुंचाएंगे। सो ऐसा योग देंगे जिससे कि भीतर जाकर के और शांतिपूर्वक वे अपना धर्म ध्यान कर सके। एक मां अपने बिना बोलने वाले बालक को जैसे कि 24 घंटे कैसा आहार इत्यादि देना, कब क्या देना, इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि बेटा तो बताता नहीं है। ऐसे ही भाव से मुनि महाराज के हाथ पर भी जैसे कि मां का हाथ हो उस भाव से रखते हैं ग्रास, कि इस मेरे एक ग्रास को मैं खाऊं तो सिवाय पांच पापों के दिन भर कुछ नहीं करूं, और इन हाथों पर मैं एक ग्रास रख दूं तो मेरा एक ग्रास ही सार्थक हो गया, ये तो वितरकता की आराधना करेंगे इस ग्रास को ग्रहण करके, इतना कीमती हो गया मेरा ग्रास। ऐसा भाव और अनाश्चर्य, दूसरे देने वाले दाता से ईर्ष्या नहीं करेंगे कि इन्हें नहीं से ले रहे, हमसे नहीं ले रहे, नहीं, आप दो, मैं तो इतने में ही तप्त हूं कि मैं देख रहा हूं मेरे यहां पर महाराज पधारे हैं, इतना ही मुझे तप्ति के लिए कारण है, मेरा ही द्रव्य तो आप दे रहे हैं। सो देने वाले किसी दाता के प्रति ईर्ष्या का भाव, मन में कलुषता का भाव नहीं लाएंगे। यह चौथा गुण है दाता का। और क्षमा भाव सब जीवों के प्रति, जिन क्षणों में वो दान दे रहा है उस समय आहार दान मुख्य रूप से अपन लेते हैं, पर चारों प्रकार के दान देते समय ऐसे ही सात गुण आवश्यक है होना, नहीं तो कॉम्पिटिशन, फलाने ने फलानी चीज दी, हम तो उससे बढ़िया चीज देंगे, बड़ी चीज देंगे, ना हमारी नीची हो जाए, ऐसा नहीं। अमात्सर्य, कुछ भी देंगे लेकिन हम उनके मोक्ष मार्ग में जो सहयोगी है वही देंगे, हम कंपटीशन नहीं करेंगे दूसरे से। क्षमा भाव धारण करके जो पात्र आया है उसी में संतोष रखना। चुल्लक जी आए, एलक जी आए, मुनि महाराज जी आए, आचार्य महाराज आए, मेरे लिए तो सभी पात्र श्रेष्ठ हैं, सो ऐसे श्रेष्ठ भाव से उनके लिए मैं दान दूं, संतोष रखूं, जो आए हैं उसी में मुझे संतोष है, मुझे तो रत्नत्रय की आराधना करने के लिए निमित्त है, सो उनके निमित्त से मैं अपने रत्नत्रय की आराधना करूं। इतना ही नहीं, इन्हें दान दे करके मैं इस लोक में यश की कामना नहीं करूंगा, परलोक में भी मुझे यश मिले दान देने से, ऐसी लोलुपता मेरे भीतर नहीं है, ऐसा संतोष भाव ये दाता का गुण है। और अलुब्धता, देते समय उस चीज के प्रति आसक्ति जागृत ना हो, देने को तो बनाई थी, देने को तो सोचा था, लेकिन देते समय भाव आ गया कि लेते ही चले जा रहे हैं, थोड़ी बची रहती हमें तो अच्छो रहते हैं, ये तो आहार के लिए हो गया। ऐसे ही दान देते समय कि इतना दान देता हूं, बोलने को तो राशि बोल दी, फिर बाद में इतने सारे रुपया, हम तो एक साथ तो नहीं देंगे, हम तो आराम से, वो जरूरी नहीं है कि हमें नहीं को देंगे, हम तो दूसरी जगह दे देंगे, जिस चीज के लिए बोला है उसको नहीं अन्यत्र दे देंगे हम, मुझे तो दान देना है, ऐसा नहीं। वो दाता का एक अलुब्धता का गुण नष्ट हो गया, लोभ जागृत हो गया, दिए हुए दान के प्रति आसक्ति जागृत हो गई। ऐसे सात गुण दाता के हैं। पात्र के गुण तो है ही कि वह रत्नत्रय का धारी हो, अपने देश व्रत और महाव्रतों का पालन निर्दोष रूप से करता हो, और विधि क्या है, नौदा भक्ति पूर्वक मैं आहार दान दूं, अत्यंत श्रद्धा से इन सब बातों का दान देते समय ध्यान रखा जाता। अकेले आहार दान ही नहीं, अगर शास्त्र भी भेंट किया है तो भी विधि का ध्यान रखूंगा, ऐसा नहीं कि हमारा नाम लिख लो, हम शास्त्र भेंट करो चाहत मंच पे कमरा में कर लियो, वो तक वो देख है लो, तो कब उतना दान देवे का मतलब, आपके अंदर यश की ख्याति की आकांक्षा है कि नहीं, कि दान देने की आकांक्षा है, ये अक्सर हो जाता है अपन लोगों से। सो ऐसे भावों से तो दान का फल अपने को जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तीन तरह का दान या सेवा कही गई, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जो देते समय या देने के उपरांत संक्लेश का कारण बने वो सब दान तामसिक दान है, और देते समय या देने के उपरांत जिसके माध्यम से हम अहंकार कर ले हुए वो सब राजसिक दान है। सात्विक दान तो वो है कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे लोभ का क्षय हुआ, मेरे भीतर त्याग करने के परिणाम बने, अनुभाग मेरा कर्तव्य है, परिग्रह मेरा कम हो जाएगा, इसलिए मैं लेने वाले ने ले लिया, अगर कह देता कि नहीं लेते तो क्या कर लेते आप। विनोबा ने लिखा कि किसी को भूख लगती है सो हमारा दान सार्थक हो जाता है, वरना तो कोई मतलब नहीं, धरे रहो अपनो। लेने वाला ज्यादा कीमती है कि उसने स्वीकार कर लिया आपका, अपन सोचते कि देने वाला कीमती है, अरे देने वाला तो तब सार्थक है उसका देना जबकि लेने वाला ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, वरना तो आप देखे देखिए किसी को और कह दे कि हमें नहीं चाहिए तो धरे रहो अपनो, कहो तुम्हारा दान को, लेकिन आ जाता अपने भीतर यही भाव कि देने वाला श्रेष्ठ है, देने वाला तो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसने लोभ का त्याग किया, लेकिन लोभ के त्याग करने में निमित्त तो लेने वाला बना, ऐसा विनय भाव अपने भीतर रहे। दो छोटी छोटी सी दोनों के लिए घटनाएं हैं जिससे जल्दी समझ में आ जाएगी कि अपने दान को अपन को कैसे संभालना चाहिए, कैसे उसे राजसिक और तामसिक ना बना करके सात्विक बनाना चाहिए। एक व्यक्ति मरण करके और पहुंचे स्वर्ग में, अब कहानी में तो ऐसा ही लिखा कि वहां पर उनका जो रजिस्टर वगैरह रखा था वो पलटा गया कि भैया कहां जाने उनको, ऐसा होता नहीं हालांकि, मगर उसमें लिखा था तो वो जो चित्रगुप्त थे
वहां पर उनने कही देखो आपके पुण्य भी बराबर पाप भी बराबर, आप जहां चाहो नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, चाहो जहां जाओ वहां जाओ। अरे वो तो चौंक गए कि ले मैंने तो इतने सारे पुण्य किए हैं जो कि पाप से भी ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। कह ले नहीं भाई आपका तो रजिस्टर में, कह ले देखो आपने कालम भूल गए हुई लिखवो हमने तो काम करवाओ। देखा उनने कह ले तुम देखो उसमें एक कालम हमने 10,001 रुपया उठे फलानी जगह दान दी थी। कह ले हाँ लिखी है 10,001, मैंने वो के सामने लिखी थी कि तुमने ताली बजवा ली थी 10,001 जब दी थी तो फिर सब खुल गए तो खत्म हो गए। उते तुमने 51,000 रुपया दान दे से उसे तुम्हारा पटिया लग गए होते जो उतर ही चले गए 51,000 पटिया नहीं जन बोला संगमरमर को जो सुख उसका फल तो वही मिल गया। अब उसका फल और क्या मिलेगा आपके लिए? ऐसा उस घटना में पढ़ने में हंसी तो आती है लेकिन वास्तव में हम जो दान देते हैं कैसी अपनी भावना रहती है उसका तुरंत फल मुझे मिले, वाहवाही हो, तालियां बजे, मेरा नाम हो, लोग कई दिन तक याद रखें कि क्या दान दिया था, ऐसे अहंकार से ग्रसित होकर के। और या फिर अगर किसी ने नाम नहीं लिया, किसी ने वाहवाही नहीं की, तो फिर अपन को अपना दिया हुआ बेकार जान पड़ता है। करी काय को और दूसरी जगह देते जहां माला पहराती वीडियो बन तो इतने तो कछु नहीं भाव, नाम तक नहीं बोलन दो महाराज ने, हमने तो पैसा दो और बताओ, वो फोटो नहीं छापो मैं अपने पत्रिका में लो। अब जी हो गया संकलेश, दान भी दिया और संकलेश भी किया तो दान व्यर्थ हो गया। लेकिन अपन इतना ध्यान नहीं रखते हैं और अपने दान को जो कि सात्विक हो सकता था उसको राजसिक और तामसिक बना देते हैं। त्याग भी किया काहे के लिए, तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं कि पर प्रीति करणात् त्यागा ध्यानम, दूसरे के प्रति प्रेम भाव अपना बने और सामने वाले का भी प्रेम भाव बना रहे इसके लिए त्याग करना ही दान कहलाता। संकलेश और अहंकार करने के लिए नहीं कहा। सात्विक दान तो श्री सेन राजा ने दिया था जो परंपरा से आहार दान के माध्यम से तीर्थंकर शांतिनाथ बने थे, वो सात्विक दान कहलाएगा। वृषभ सेना ने औषधि दान दिया था, पहले तो मुनि महाराज से देश भस देवालय में विराजे उनके ऊपर कचरा डाल दिया था, लेकिन फिर मन में भाव आया कि अरे मैंने ये काम ठीक नहीं किया, सो कचरा हटा करके उनका उपचार किया, उनकी सेवा करी, उस सेवा के परिणाम से दूसरे जन्म में उनको इस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त हुई कि उनके स्नान के जल से लोग निरोग होने लगे। ऐसा वृषभ सेना का नाम औषधि दान में जो सात्विक दान है उसमें आता है। कौंडेश मुनि महाराज जी अपने पूर्व जीवन में गोविंद नाम के ग्वाला थे, उनको एक पेड़ में शास्त्र जी रखे हुए दिख गए थे, सो उनकी पूजा करते रहे और एक दिन मुनि महाराज जी को देख करके उनके मन में भाव आए कि ये शास्त्र तो जिसकी मैं पूजा करता हूं महाराज इसको बांच करके और कुछ बात बताएंगे, सो उनको वो शास्त्र भेंट कर दिया। उस शास्त्र भेंट के सात्विक भाव से वो नगर प्रमुख के पुत्र हुए और जाति स्मरण हो गया, उस जाति स्मरण से उन्हें वैराग्य उत्पन्न होकर के स्वयं मुनि बने और महाज्ञानी हुए। शास्त्र दान का फल जो सात्विक शास्त्र दान अपन ने तो बहुत शास्त्र दान हुई है लेकिन देखें अपने परिणाम कि हमारे परिणाम अहंकार से और संकलेश से भरे तो नहीं है। और सूकर का नाम आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शावकाचार में उल्लेख किया। अभय दान में बड़ी बड़ी धर्मशाला बनवाने वालों को नाम नहीं लिखो, लिख देते। सूकर ने अभय दान दिया, पहले के जीवन में भी अभय दान देने में उनके प्राण चले गए लड़ते लड़ते और सूकर की पर्याय और सिंह की पर्याय को प्राप्त हुए वो दोनों जीव। और सिंह की पर्याय में जब वो अपने शिकार के लिए सिंह गया था सो उस खाली गुफा में मुनि महाराज जी आकर के ध्यान में लीन हो गए। सूकर ने सोचा कि सिंह आकर के मुनि महाराज पे आक्रमण ना कर दे, मैं तो गुफा के दरवाजे पर रक्षा करूंगा मुनि महाराज की, उनको मैंने यहां पर ये आवास दिया है। ऐसा विचार करके वो सिंह से लड़ा और लड़ते लड़ते सिंह का भी प्राणांत हुआ और सूकर का भी प्राणांत हुआ, लेकिन सूकर मर करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अभय दान में उसका नाम आचार्य सुमंत भद्र स्वामी ने स्मरण किया। भाई ऐसे चार उदाहरण अपने लिए जीवन में अपने दान को सात्विक बनाने की शिक्षा देते। सात्विक दान का वर्तमान में भी एक उदाहरण है कि एक सेठ जी ने पूरा मंदिर बनवाया और मंदिर का बाद में अब बन लो चंदा से, पहले तो एक व्यक्ति बनवा देता था पूरा, कोई अहंकार नहीं। उन्होंने सोचा कि अब मंदिर पूरा बन गया है, अब सब समाज को बुला के गांव घर को और अपन मीठा इत्यादि कुछ खिलाओ, सो सबको निमंत्रण दिया, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके सारा गांव उनके यहां जीमने के लिए आया। वो एक व्यक्ति नहीं आया, सो सेठ जी ने उसके यहां पर जो भी मिठाई थी वो अपने नौकर से भेजी, सो उस व्यक्ति ने लेने से इनकार कर दिया कि भाई मेरा तो सेठ जी से कोई व्यवहार है ही नहीं, लेन देन है ही नहीं, हम काहे को सेठ जी को ले ले, फिर हमें हमसे तो सेठ जी ने कभी लिया ही नहीं, इतने बड़े आदमी है वे, हम क्या देंगे उनको, हम तो गरीब आदमी है। सो सेठ जी को जब ये बात मालूम पड़ी कि मेरा तो तब लेंगे जबकि मैं कुछ उनका स्वीकार करूं तब, सो सेठ जी भी बड़े विनम्रता से अपने रथ में बैठ करके उसके घर के पहले ही उतर करके पैदल धूप में उसके घर तक पहुंचे, और कभी चले नहीं थे पैदल और वो भी धूप में, सो हांफ गए और जाते ही साथ उसकी दुकान के बाहर बिछे हुए पत्थर पर बैठ गए और कहा कि भाई गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पानी तो पिलाओ। सो जैसे ही उस व्यक्ति ने उनको पानी पिलाया, सो अपने नौकर से कहा कि दे दो भाई मिठाई उनके घर में। सो फिर उसने सेठ जी की तरफ देखा कि मिठाई कैसे स्वीकार कर लूं, सेठ जी ने कहा कि भैया आप तो ले लो हमारी मिठाई, हमने तुम्हारा पानी पी लो। हैं कैसा विनय का भाव, ये है सात्विक दान। अपन तो अहंकार पूर्वक कितना कितना बड़ा बड़ा दान करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन जरा सा दान किया बड़ी विनय पूर्वक किया अपन अपने दान को, ऐसा ही थोड़ा सा दान। निराला का भी उदाहरण आता जीवन में, साहित्यकार थे, उनको एक बार साहित्यिक लोगों को बहुत चिट्ठियां आई, उनको जवाब देने के लिए टिकट के पैसे तक नहीं थे, सो सबरे जवाब देने के लिए वो पत्र उनके टेबल पर इकट्ठे होते चले गए, टिकट लगे तो बेजावे। सो उनके मित्र को मालूम पड़ा कि इनके पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं है, कैसे पत्र व्यवहार करें। सो चुपचाप आकर के मित्र ने 5 रुपए निराला की जेब में रख दिए। सो उन 5 रुपयों से टिकट खरीद करके और सब पत्र व्यवहार कर दिया, दिन बदले, साता का उदय आया, सो अच्छी स्थिति हो गई। जब अच्छी स्थिति हो गई तो उनके मित्र जिन्होंने 5 रुपए की मदद की थी जब जब मिलते, सो धीरे से 5 रुपए का नोट निकाल करके उनकी जेब में रख देते। तो 2-4 बार तो मित्र ने कुछ नहीं कहा, फिर एक दिन मित्र बोले कि अब तुमसे मिलना बंद करना पड़ेगा निराला। क्यों भाई, 5 रुपए मैंने क्या दिए, तुम तो हर बार मुझे 5 रुपए दे देते हो, ये तो ठीक नहीं है। तो निराला ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि जिस स्थिति में तुमने 5 रुपए देकर के मेरी मदद की थी, मैं अगर पूरी जिंदगी रोज भी 5 रुपए दूं तो उसे चुका नहीं पाऊंगा। यह है सात्विक दान, यह है भाव दान के। भाई अपन उनसे शिक्षा लें और ऐसे दान के लिए अपन उत्सुक रहें कि हां वास्तव में हम देते तो बहुत सारा दान है, लेकिन हमारे परिणाम उस दान के देते समय सात्विक बने रहें। इस तरह का अगर हम दान देते हैं 4 प्रकार के संघ को, 4 प्रकार का, तो हमें यह दान भी
महाव्रतों की शिक्षा देकर के हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनता है। निस्वार्थ होना चाहिए। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात उपासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तवनात कीर्ति तपोनिधिसु। आचार्य भगवंतों ने समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि उच्च गोत्र कैसे प्राप्त होता है, प्रणते झुकने से। झुकने में तो ये लगता कि हम नीचे हो गए, लेकिन कह रहे कि उच्च गोत्र प्राप्त होगा जो निरंतर विनय भाव रखता है। भोगो दानात, अगर आप त्याग करेंगे दान देंगे तो अपार संपत्ति आपके लिए आगे पीछे पड़ी रहेगी। और लालची व्यक्ति तो संपत्ति जोड़ के रखता, उसको मिलती नहीं है, सुख आसानी से मिलते। उपासनात पूजा, पंच परमेश जी की उपासना करेंगे तो आपको संसार में यश और वैभव प्राप्त होगा, आपकी भी पूजा होगी। भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले की सुंदरता देखते बनती है, अत्यंत सुंदर रूप को प्राप्त होता है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है। मांगता नहीं है कि मैं सुंदर हो जाऊं इसलिए भक्ति कर रहा हूं, हां कर्मों की निद्रा के लिए भक्ति करी थी तो जी फोकट में मिल गई चीज, हां और कुछ नहीं। स्तवनाथ कीर्ति तपो निधिसु, और जो तपस्वी जन हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, उनके स्तवन करने से हमारी कीर्ति, हमारा यश संसार में फैलता है। दूसरे की गुणवान की प्रशंसा करने से हमारे गुण ही प्रकट हो जाते हैं, हमारा भी लोग यश गाने लगते कि देखो भाई किस तरह से, अपन तो दूसरे की निंदा करते सो अपनी भी निंदा होगी, ये ध्यान रखना। और दूसरे की प्रशंसा करो तो अपना कुछ घाटा नहीं है, अपने अंदर जिस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं उस चीज के प्रति जो विनय भाव है वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण। निस्वार्थ होना चाहिए, तो दान में प्रति उपकार की भावना ना हो, अत्यंत निस्वार्थ भाव से अगर दान किया जाए। एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। वैसे दान का फल आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जैसे कपड़े पे दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, उसको भी जल से अपन दूर कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही घर गृहस्थी के कामों में संचित जो कर्म है वो दान के द्वारा क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे। लेकिन दान प्रति उपकार की भावना से रहित होना चाहिए। एक चोर आदमी था, ट्रेन में चोरी करने चला वो, सो लोगों के बहुत सारे पैसे चुराए। उस समय चल रहा था सत्याग्रह गांधी जी का, जिसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। एक वृद्ध व्यक्ति थे, सो वो एक टीम में रुपए लोगों के सामने कर देते थे कि भैया मेरे रुपये डाल दे, मैं रसीद रखी है, सो अपना नाम लिख दो और जितने दान देने सो दे दो, सरल भाव से ऐसा था। सो इकट्ठे कर रहे थे रुपए, खुले हुए तो थे, मैं उनको पेटी कछु बंद कर दी थी, मैं कछु जरूरत थी, सो खुले उसमें पैसे रखे हैं पेटी में और सामने रखी उसी में रसीद बंदी रखी हुई है कि अपनी इसमें जो राशि देना हो सो रसीद बंदी पर अपना नाम लिखो और दे दो। ऐसा कलेक्शन कर रहे थे, वो तो बंद थे, बैठे थे, अब उनको का रखवाली करने की, सो चुपचाप बैठे थे बीच में उठ करके और लघु शंकर इत्यादि के लिए गए। उस चोर की नियत भूल गई, उसने कहा ये तो इकट्ठे पूरे के पूरे पैसा अपन को बिना मेहनत के मिल रहे, सो सबने ले लो। सो उसने वो सब चुरा लिए। वो वृद्ध जब तक आए तब तक उनने देखा कि वो तो चोरी हो गई। उस चोर ने दूर ले जाकर के जब उन सब पैसों को रखना चाहा सो उसमें सत्याग्रहियों के द्वारा दिया गया दान और उसकी रसीद देख करके उसकी आंख भी खुली रह गई। उसने कहा अरे ये तो सत्याग्रहियों के लिए दिया जाने वाला दान है, मैं इसे चुरा रहा हूं। उसने जितना उस दिन लोगों से चोरी करके रुपया पाया था सब उसमें डाल दिया और वो ज्यों का त्यों उन वृद्ध के पास में जाकर के रख दिया।
और चोरी का त्याग कर दिया। प्रतिउपकार की भावना अगर है तो दान ना होकर के इन्वेस्टमेंट हो गया, ये तो सौदा हो गया, दान नहीं रहा। दान तो वो है जिसमें कि कोई प्रतिउपकार की भावना नहीं है। दिया मैंने, कौन देखने वाला वहां पर कि मैंने इतना दान दिया, रसीद पर नाम भी नहीं लिखा, बस ले लो काम आ जाए तुम्हारे, ऐसे दान की ही श्रेष्ठ माना आचार्य भगवंतों ने। तो ऐसे दान से ही अपना कल्याण हो सकता, ऐसी सेवा और दया वृत्ति से ही जो कि रत्नत्रयधारियों के प्रति अपने मन में आती है वही हमारे लिए कल्याणकारी है। अपन सब ऐसे भाव बनाए जिससे कि अपने जीवन में भी रत्नत्रय आवे। आचार्य विभा विद्यासागर मुनि महाराज
पर्व दो अष्टमी दो चतुर्दशी जो कि प्रतिमाह आती हैं, उन पर्वों में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समस्त आरंभ परिग्रह स्नान अलंकार इत्यादि आभूषण इत्यादि धारण करने का विकल्प न करते हुए अपने मन वचन काय को एकाग्र होकर के और पंच परमेश्वरी में लगाना, उनके गुणों का स्मरण करना, यही प्रोषदोपवास। आचार्य समन्वद्र स्वामी ने प्रोषद का अर्थ एक बार भोजन करना यह भी लिखा है। दिन भर में दो ही वेलाएं भोजन की कही गई हैं, एक प्रातःकाल की वेला और एक संध्या काल की वेला, दोपहर की वेला। लिखा भी है कि जो गृहस्थ है वो तो दो बार भोजन करता है और जो साधु जन या योगी हैं वो एक बार भोजन करते हैं। जो बार बार भोजन करते हैं उन्हें तो क्षुधा की वेदना एक रोग की तरह निरंतर पीड़ित किए हुए है, सो रोगी ही बार बार भोजन करता है। बुरा नहीं मानना भाई कि अपन रोगी हो गए, अपन तो वीर वीर खा ले, नहीं लिखा हुआ है कि हमें भी इस क्षुधा रूपी जो रोग लगा हुआ है उसको जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रोषद उपवास के करने से हम अपनी क्षुधा को जीत सकते हैं। ऐसा उपवास जिसके आगे पीछे एक बार भोजन किया जाता हो ऐसे उपवास को भी प्रोषद उपवास कहते हैं। सो अष्टमी का उपवास करना है या चतुर्दशी का उपवास करना है सो सप्तमी नौमी के दिन और तेरस और अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी एक आसन पूर्वक ही धर्म ध्यान करते हुए अपना दिन व्यतीत करेंगे। और उपवास के दिन क्या करें, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके घर गृहस्थी के कार्यों का भी त्याग कर दिया। ऐसा नहीं कि आज तो चारों प्रकार का आहार नहीं करना है सो और दूसरे काम घर गृहस्थी के विस्तार लो, नहीं भाई, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके उपवास करे तो ही श्रेष्ठ है। घर गृहस्थी के कामों में लग करके भी अपन उपवास करते हैं पर साधना ऐसी भी करना चाहिए कि मैं ऐसा उपवास करूं जिसमें घर गृहस्थी का काम न विस्तारूं। हम पहले अपने माँ पर बहनों पर हंसते थे, हंसी उड़ाते थे कि देखो आज उपास है सुमंदर चले हैं, भोजन देखेंगे ही नहीं तो याद ही नहीं आएगी, मंदिर में दिन व्यतीत करेंगे जिस किसी तरह, ऐसा करके उनका हंसी उड़ाते थे। आज समझ में आता है कि देखो उन्होंने अपने उपवास को सार्थक करने के लिए धर्म ध्यान पूर्वक अपना दिन व्यतीत करने का संकल्प लिया। घर गृहस्थी में रहेंगे तो घर गृहस्थी के सैकड़ों विकल्प मन में बने रहेंगे और धार्मिक लोगों के बीच में अपना दिन व्यतीत करेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत मन में विचार भी आएगा चार प्रकार के भोजन के ग्रहण करने का, तो वह दूर हो जाएगा। अब आज के समय में अपन उपवास करते हैं और या तो कोई उपन्यास लेकर के पढ़ने लगेंगे समय निकालने के लिए, और या फिर टेलीविजन तो है सो उसको देखते हुए बैठे रहेंगे, और संध्या भाई सो अपनो बिस्तर लगाओ और सो गए, अब तो हमें नींद आ रही, उपवास तो हम आवाज को ये भैया, तो क्या फायदा हुआ उपवास के लिए? लंघन करी आपने चार प्रकार के आहार का, त्याग किया। अरे चारों कषायों का भी अपन शमन करने का प्रयत्न करें। धर्मामृतम सतृष्णा, धर्मामृत का पूरे तत्परता के साथ, पूरी रुचि के साथ, पूरे उत्साह के साथ स्वयं धर्मामृत का पान करें, और इतना ही नहीं और लोगों को भी धर्मामृत का पान कराएं। उपवास के दिन ऐसा करके हम अपने उपवास को सार्थक कर लेते हैं। सो ऐसे प्रोषदोपवास की चर्चा भी शिक्षा व्रत के रूप में आचार्य भगवंतों ने की है। एक और शिक्षा व्रत है जिसे अपन अतिथि संविभाग या कि भैया व्रत कहते हैं। हम रोज ही आहार ग्रहण करके या अन्य वस्तुओं को ग्रहण करके उस आहार के माध्यम से अपने परिणाम कलुषित करते रहते हैं। क्या करूं कि मेरी सारी सामग्री आहार की पवित्र हो जाए, सार्थक हो जाए मेरा बनाना? तो उपाय यही है कि मैं अपने आहार में से कुछ भाग अतिथि को दूं। अतिथि संविभाग व्रत इसी का नाम है, या कि साधुजन उनके प्रति, रत्नत्र के प्रति हमारे मन में अनुराग है, सो उस अनुराग बस हम उनकी सेवा करते हैं, यही भैया व्रत है। अतिथि तो जो संयमी व्यक्ति निरंतर अपने संयम का पालन करता है और बिना तिथि के आने जाने की प्रक्रिया करता है, न आते समय आने से पहले बताता है, न जाते समय जाने से पहले डिक्लेयर करता है कि मैं जाऊंगा, वही अतिथि है। बाकी तो सब अपन मेहमान और अभ्यागत हैं कि जो पहले से अपनी व्यवस्था के लाने दो दिन पहले समाचार भेज दे और जब जाऊं लगे फिर रिजर्वेशन करवा लो, हैं? करवाना पड़ता कि अच्छी सुविधा से अपनी यात्रा हो जाएगी। सो ऐसी सुविधा से तो अपन धर्म आज करने लगे हैं, पर वास्तव में देखा जाए क्या हम इस तरह से धर्म करेंगे? नहीं कहना चाहिए लेकिन क्या करें, कहे बिना रहा नहीं जाता। अत्यंत मन में जब से सुना है तब से दुख है कि कल अपन ने इतना बड़ा आयोजन किया जिसके लिए हमने, और अपना जो 3 बजे से धर्म ध्यान करते वो भी छोड़ा, और सब लोगों ने वहां सिंहोनिया में जा करके और क्या किया है ये सुन करके शर्म लगती है कि वहां पर खिलाने वाले परोसने वालों ने आलू के समोसे खिलाए, पाउच बेचने वालों ने मंदिर के सामने से पाउच बेचे, हम खाने वाले लोगों को अपनी जिब्बा पर इतनी लगाम नहीं है कि एक दिन के लिए हम पाउच और आलू का त्याग कर दें। ये देख करके जो लोग थे वो कहने लगे कि हमें अच्छा नहीं लगा, हम तो आए थे कि अच्छा धर्म ध्यान होगा, वहां के दर्शन करने मिलेंगे। सो कल ही कहा था हमने कि भैया ये तो भीड़ है, सो भीड़ तो आना जाना फ्री कर दो, खाना फ्री कर दो, सो खूब हो जाएगी। ऐसे अपने धर्म के आयोजन में अपन भीड़ को क्राइटेरिया मान लेते हैं कि सफल हो गया, बहुत भीड़ हुई थी, लेकिन क्या काम की भैया, अपन ने धर्म किया या कि धर्म के क्षेत्र पर जाकर के और धर्म की हंसी करी। ये अपन के धर्म ऐसे करने के जो तरीके हैं उनको सुधारना चाहिए। जरा सा किसी ने कल ही रास्ते में भीड़ होने से थोड़े से समझदारी का काम करके पैर छू रहे थे, सो पैर छूने के लिए मना किया, सो चार कदम आगे निकल के आए और पूरी नवयुवकों की भीड़ में और हंसी ठट्टा के देखो जी बड़े हो गए आचार्य श्री से, बड़े हो गए, पांव नहीं छुअन दे रहे, अब बताओ। कल मुझे लगा कि कोई जो कि वीतरागता में श्रद्धा नहीं रखता वो हंसी उड़ावे तो ठीक है, लेकिन वीतराग धर्म में पैदा हो करके वीतराग मार्ग पर चलते हुए साधु जनों के लिए इस प्रकार के भाव अपने मन में आवे तो कितने दिन और रहेगा ये धर्म। इस बात को सोच करके हमारे लिए अत्यंत कष्ट हुआ, होना नहीं चाहिए था, समता रखनी चाहिए थी लेकिन नहीं रख पाए भाई। ये देख करके लगा कि बोलना तो चाहिए, धीरे धीरे हमारा धर्म का जो सोच है वो खत्म होता जा रहा है। हम क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं, धार्मिक आयोजनों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वीतरागता और हमारी अहिंसा ये धर्म है, ये बना रहे, और सब बाद में, पहले हमारी वीतरागता और हमारी अहिंसा, इसका पोषण होना चाहिए तो हम अपने जीवन में धर्म धारण कर पाएंगे। आचार्य भगवंतों ने तीन प्रकार के दान कहे, लौकिक, और चार प्रकार का दान अलौकिक। ऐसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के दान की अतिथि संविभाग या भैया व्रत की चर्चा करी। वैसे तो अपन ने तत्वार सूत्र में 10 प्रकार की भैया वृत्ति, विभिन्न आचार्य उपाध्याय आदि जो 10 भेद हैं उनकी अपेक्षा से करी, लेकिन और समझने की कोशिश करें कि लौकिक दान और पारलौकिक दान क्या है। सो लौकिक दान के 3 भेद करें, एक सकल दत्ति, एक समदत्ति और एक दया दत्ति। दत्ति मतलब दान, सकल दत्ति क्या कहलाएगी, अपने योग पुत्र को जो कि धर्म की परंपरा और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाए, उसे अपनी सारी संपत्ति सौंप करके स्वयं दीक्षा ले लेते हैं, घर से विरक्त हो जाते हैं, यह सकल दत्ति है। अब तो इसका स्वरूप बदल गया, जिसके हाथ में लाठी होवे, अयोग्य भी होवे, तो वह भी संपत्ति पर अपना अधिकार बना लेता है। लिखा हुआ है उसे भी दान कहा कि जो जीवन भर ईमानदारी से कमाई करी थी उसका क्या करूं, अपने योग पुत्र को वो ही योग्य है जो कि धर्म की परंपरा को और कुल की परंपरा को आगे बढ़ावे, उसमें 4 चांद लगावे, उसे अपनी समस्त संपदा को दे करके और स्वयं संसार से विरक्त होकर के चले जाते हैं, ऐसा जो दान है वह दान सकल दत्ति कहलाता। अपन को समझना तो चाहिए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे ये बात जुदी है, लेकिन ध्यान में तो रहे। और समदत्ति, समदत्ति तो वो कहलाती कि अपने सामान आचार आचार विचार वाले व्यक्ति को अपनी बेटी और गृहस्थी के योग सामान इत्यादि दे करके विदा करना और अपने कर्तव्य से मुक्त होना, ये समदत्ति कहलाती। सो आज तो अपन समान आचार विचार नहीं देखते, पैसा देखते हैं, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर ले, अपन कर सकते हैं कि हम समान आचार विचार वाले को ही अपनी बेटी देंगे और जो घर गृहस्थी का सामान दिया जाता है सो देंगे, आपकी कोई अगर मांग है उसे हम पूरी नहीं करेंगे। बेटियों को कहता हूं कि युवा से विवाह करना, वृद्ध से विवाह नहीं करना। जो अपने बाहुबल से कमा सके सो युवा है, और जो दूसरे से संपत्ति मांग करके अपने भरण पोषण के लिए 4 लाख 10 लाख रुपया रखवा ले गए वो काहे का युवा है, वो तो वृद्ध हो गया जिसको अपने पौरुष पर जरा भी गौरव नहीं है। जो दूसरे की कमाई हुई संपत्ति पर लालच करके उसे हड़पना चाहता है, इस बहाने बंदूक लेके डाकू तो अपनी छाती पर अड़ा दे, 100 रुपया भर दे, मनो जा बंदूक अलग है डॉक्टर की, हमारा लड़का डॉक्टर है एक बंदूक, सुल्तान भाई ऊपर धरो 20 लाख रुपया जब कर ले आओ, हमारा लड़का इंजीनियर है लगाओ दाओ, जिसके जितने पैसे लगा सको उतने लगाओ। ऐसा अपन आज करने लगे हैं, लेकिन क्या योग्य है, क्या इसमें धर्म होगा? जबकि आचार्य भगवंतों ने इसे भी लौकिक दान माना है, इससे भी जीव अपना कर्तव्य पालन करके जीवन को अच्छा बना सकता है। और फिर दया दत्ति, उसमें पात्र और अपात्र को अपन नहीं देखते, जिसके प्रति करुणा भाव आ गए उसको अपनी जो भी संपत्ति खाने पीने की चीज है वो सब दे देते हैं दया करके। जो भिखारी इत्यादि को अपन अपने मन में दया भाव आ जाता है तो देते हैं, और अगर कोई मजबूरी हो गए कि 4 जने खड़े हैं वो मांग रहे हैं वो उन्हें दे हैं, तो 4 जने कहें कि काय के पैसा वारे बताओ दे तक नहीं रहे सो दे दो दियो, चलो हटाओ जल्दी करो अलग हो। ऐसे अपन ने अपने अहंकारवश अगर दे दिया है दान तो वो दया दत्ति नहीं कहलाएगा। अत्यंत दया से द्रवीभूत होकर के जो अपने मन में कि हमने तो इतनी मेहनत से भले ही कमाया है लेकिन ये तो जरूरतमंद है मैं इसकी मदद करूंगा, ऐसा दया का भाव अपने मन में अगर आता है तो दया दत्ति है। एक इंदौर का उदाहरण बहुत पहले सुनने में आया था, उनके माता पिता से भी मिलना हुआ, उनके माता पिता दोनों ही उस लड़के के, वो लड़का जिसका नाम मयंक था 14 साल का था, उसके माता पिता दोनों ही प्रोफेसर हैं, और अपने मामा जी के साथ सोनागे की वंदना के लिए वो लड़का गया, लेकिन कर्म का उदय किसको छोड़ता है, जन्मदिन के दिन ही वापिस लौट रहा था सो कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसमें उसका घात हो गया, जिसको ब्रेन डेथ कहते हैं, अभी पूरी तरह से नहीं मरा है, डॉक्टर की भाषा में अभी हार्ट बीटिंग चल रही है लेकिन ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, और थोड़े देर के बाद ही अगर ब्रेन डेथ हो गई है तो 2-5-10 घंटे के बाद पूरी तरह से भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा डिक्लेयर हो गया। माता पिता से कहा गया कि भाई अब तो बचने वाला नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों आंखें किसी दूसरे दो लोगों की रोशनी देने वाली हो सकती हैं, दोनों किडनियां काम आ सकती हैं, पूरी स्किन जो 80% जल गए हैं लोग उन पर ट्रांसप्लांट हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी से। इतना कठिन निर्णय ऐसे संवेदनशील क्षणों में उनके माता पिता को लेना था, मोहवश तो नहीं लिया जा सकता लेकिन दयावश तो लिया जा सकता है। क्षण भर उनको मन ही मन बहुत वेदना तो हुई, लेकिन उन्होंने दस्तखत कर दिए कि मेरे पुत्र का भी मन था कि मेरे शरीर का एक एक अंग किसी और के परोपकार में लगे, सो उस 14 वर्ष के पुत्र की दोनों आंखें दोनों किडनियां जो देने योग्य थी और पूरी स्किन डॉक्टर को दे दी गई। आप आश्चर्य करेंगे कि जिन लोगों को एक एक आंख दी गई और जिनको किडनी दी गई जो कि मरण की तरफ थे, वे आज जीवित हैं और अपने भगवान के साथ में उस 14 वर्ष के बेटे की फोटो लगा करके उस पे अगरबत्ती जलाते हैं कि भगवान तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हमें जीवन दान देने वाला व्यक्ति तो यह है। भाई, धर्म तो दया में है, अहिंसा में है। इसमें विचार कर सकते हैं कि ऐसा दान देना चाहिए कि नहीं, गोष्ठी बिठा सकत, बहुत बड़े बड़े पेपर लिखे जा सकत, जा सिद्ध करी जा सकत के देना चाहिए कि नहीं। लेकिन विचार करो कि उस समय कैसे संवेदनशील क्षणों में और दया का भाव आ जाने से यह कार्य आसान हो गया। भाई, ये तो सब लौकिक दान है जिनसे मात्र पुण्य का अर्जन होता है, लेकिन पारलौकिक दान भी है जो कि देशव्रति या महाव्रति या कि सम्यक दृष्टि जो अव्रति है, उत्तम मध्यम जगन पात्र को दिया जाता है। चार प्रकार का दान अत्यंत श्रद्धा भाव से वह कर्मों की निर्जरा और पुण्य के अर्जन में कारण बनता है। दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए, ऐसा अपन पढ़ते हैं। चार प्रकार का दान है, औषध, आहार, आवास और ज्ञान दान या उपकरण दान। ये चार प्रकार का दान किसको देना? मुनि आरी का, शावक शाविका, इनके लिए देने को कहा। काहे इनके लिए देने को, सबको क्यों नहीं कहा? भाई, गुणवान को देंगे, वीतरागी को देंगे तो मेरे भीतर भी मैं यही चाहता हूं कि ऐसे गुण, ऐसी वीतरागता आवे, ऐसे अनुराग बस, ऐसी श्रद्धा बस मैं दे रहा हूं। और भी प्रकार से देने के लिए है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि जहां वीतरागता है वहां मेरा अनुराग व्यक्त करने के लिए, उन सब की भी सहायता के लिए, उनकी सेवा के भाव से, अत्यंत श्रद्धा भाव से मैं दान दूंगा। वास्तव में दान वही श्रेष्ठ है जिससे के दूसरे का संसार से कल्याण होवे। हमने एक दिन कहा था कि अपन और बहुत सी चीजें, भौतिक चीजें दान में दे देते हैं, तो उससे भी श्रेष्ठ दान है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। विनोबा ने तो लिखा कि किसी को नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से बलवान बना दिया, यही उसकी सेवा है। उसको आत्मनिर्भर बना दिया, यही वास्तविक सेवा है। अकेले रोटी कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, तो ये तो बहुत, कोई भी दे देगा, ये तो सेवा विशेष नहीं है। विशेष सेवा तो वो है कि जिसको श्रद्धा नहीं है सच्चे मार्ग में, उसको सच्चा मार्ग बना बता करके उसकी श्रद्धा उत्पन्न कर दी। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको आत्मज्ञान की रुचि जागृत कर दी। जिसके चारित्र में अभी उतनी ऊंचाई नहीं आई है उसको चारित्र के प्रति उत्साहित कर दिया और चारित्रवान बना दिया, तो ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा दान है। जैन दर्शन में ऐसी ही सेवा और ऐसे ही दान का उल्लेख है जो कि प्राणी मात्र का कल्याण करने में निमित्त बने। बहुत बहुत प्रकार से आज अपन दान देते हैं, काय के लिए देते हैं? उससे क्या दूसरे का कल्याण होगा? बताओ, हमने अगर भोजन इत्यादि करवाया और अवक्ष खिलाया तो उससे, उस दान से क्या हमारा और दूसरे का उपकार हुआ? नहीं भाई, दान तो वही श्रेष्ठ है जिसमें कि हम अपने परिणाम और दूसरे के परिणाम अच्छे करते, उसको भी त्याग के मार्ग पर, चारित्र के मार्ग पर लगाते हैं। आज वर्तमान में मैं तो सोचता हूं, देखता रहता हूं कि जितनी निर्धनता है उस निर्धनता का एक ही कारण है, कर्म का उदय तो अंतरंग कारण है ही, व्यक्ति के अभाव के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण है उसके चारित्रिक और नैतिक पतन, जो कि निरंतर अपन देखते हैं कि दीनहीन दरिद्र जो अभावग्रस्त है उसके प्रति दया का भाव आता है, लेकिन उसके लक्षण देख करके दया का भाव लुप्त हो जाता है। दिन भर में 4 रुपया तो कमाएंगे लेकिन 40 रुपए की शराब पी लेंगे, ये क्या है? पाउच खाएंगे, सिगरेट बीड़ी पिएंगे, उसमें अपना पैसा बर्बाद करेंगे, लेकिन 2 रोटी अपने परिवार के लोग ठीक से खा सकें, शुद्ध भोजन कर सकें, इस बात का उनको विवेक नहीं रहे। ये विवेक शून्य या चारित्रिक और नैतिक पतन से युक्त क्या हम अपना कल्याण कर सकते हैं? क्या वास्तव में हम अपने दान को सार्थक बना सकते? एक बाबा जी थे, सुबह राजा के यहां पर रोज आते और राजा को एक फल, बहुत सुंदर फल था, सुबह दे जाते, तो राजा को किस चीज की कमी है? अब चूंकि बाबा जी ने दिया है इसलिए ले लो भाई, सो मंत्री जी को फल दे देते कि धन लो, दे देना किसी को खाने काम आएगा। मंत्री जी ने सोचा कि बाबा जी ने फल दिया है तो ऐसे खा करके तो नष्ट नहीं करूंगा, उनको जोड़ते जाओ, का पता कुछ हो इसमें। सो मंत्री जी ने बुद्धिमानी का काम करके एक कमरे में रोज दिए जाने वाले बाबा जी के फलों को इकट्ठा कर लिया। 6 महीने गुजर गए, रोज